मेरे युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत तो हम लोग प्री 2022 की तैयारी के बारे में ही बात करेंगे। आज उसका यह चौथा अंक है, लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। मुझे मेल से यह जानकर के बड़ी खुशी हुई कि कल मैंने जो आपको दो घटनाओं के बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से इन के बारे में डिसीजन आना है, आप सब ध्यान से अखबार को पढ़ें, तो इसे आपने बहुत अच्छे से वेलकम किया है और कुछ लोगों ने लिखा है कि इसकी वजह से हम अब उस समाचार को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से मैंने बताया भी था। आपने देखा कि पेगासस मामले पर बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित कर दी है। अब जो समिति गठित की है, देखिए, अब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से जब देखेंगे इस न्यूज को तो कैसे देखेंगे। कुछ अखबारों ने बहुत थोड़े से रूप में लिया है, कुछ अखबारों ने बहुत विस्तार के साथ लिया है, इनमें से अब आपको छांटना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात जो कही वो ये कही कि इसकी जो जांच है, जांच क्या है, मामला क्या। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि चलिए अखबार में हो सकता है कि मामले के बारे में ना लिखा हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं जरा जानूं कि ये पेगासस मामला क्या है। तो कुछ नहीं दोस्तों, ये जासूसी का मामला है, एक सॉफ्टवेयर है कह लीजिए, उस सॉफ्टवेयर को अगर आप किसी में लगा देते हैं तो उसके फोन की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। आरोप लगाया गया कि सरकार ने कुछ लोगों के फोन में ऐसी जासूसी की है, सरकार यानी कि केंद्र सरकार। हल्ला गुल्ला मचा, केंद्र सरकार से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए बात खत्म होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह केंद्र में है। अब केवल इस बिंदु को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने कल जो बात कही है उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने केवल एक ही बिंदु की बात कही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण, और डेफिनेटली किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला होता है वो सर्वोपरि होता है। तो पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि ये सरकार का ही मामला है तो जो कमेटी बनेगी उसमें सरकार के लोग नहीं होंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, क्योंकि जांच होना ही जरूरी नहीं है बल्कि ये जानना भी जरूरी, ये दिखाई भी देना चाहिए कि जांच निष्पक्ष हुई है। तो जो कमेटी बनाई गई है उसमें सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है तो उसने क्या मेजर तीन बातें कही हैं। पहली बात उसने ये कही कि भाई जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक है जो खुफिया एजेंसियां हैं वो काम करती हैं और वो जरूरी भी है, हम उसको अस्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन इस प्रक्रिया में नियमों का पालन होना चाहिए, इसके लिए नियम बने हुए हैं उसका पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र तो है लेकिन अंधाधुंध किसी को भी बिना सोचे समझे जिसके भी मन में आए कहा कि साहब इसकी जासूसी की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लगातार हमारे देश के जो विपक्ष थे और भी जो दूसरे एकेडमिक थे वो मांग कर रहे थे सरकार को कि भाई आप बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला इसमें कैसे जुड़ा हुआ था पेगासस मामले में लेकर के। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि खासकर जो जुडिशरी के जो पावर्स हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में लिमिटेड हैं, ज्यादा पावर्स जुडिशरी को नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सरकार हर बार ऐसे मामलों में कोर्ट के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहे और उस क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा का जरूरी था इस मामले में इसके बारे में वह कुछ भी न बताए। तो ये मामला भी इस तरह से भी नहीं चलेगा, अगर उससे जानकारी मांगी जा रही है तो यह उसका कर्तव्य बनता है कि वह जानकारी दे। तीसरी बात उसने कही कि जो जर्नलिज्म है, देखिए लोकतंत्र का आधार है जर्नलिज्म, जो हमारे पत्रकार हैं वो न्यूज लेकर के आते हैं तो उन्हें न्यूज कहीं सोर्स से मिलती है, कोई ना कोई तो बताता होगा ना, तो जब उन्हें न्यूज मिलती है तो वो जो सोर्स है जहां से न्यूज मिली है उसको बताया नहीं जाता, क्योंकि अगर न्यूज बता दी जाएगी कि किसने दी तो फिर वो बताना आगे बंद कर देगा। तो इसमें भी कोर्ट ने कहा कि जो सोर्स की जो सुरक्षा है, स्रोत की जो सुरक्षा है, वह पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी है और अगर उसकी रक्षा नहीं होगी, यानी कि सोर्स की सुरक्षा की रक्षा नहीं होगी तो कोई भी जानकारी देने से हिचकेगा और फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या क्या रह जाएगा। तो ये बातें कही हैं। दोस्तों, मैंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रमोशन के बारे में आप सबसे कहा था कि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है। किसी अखबार में मुझे नहीं पढ़ने को मिला इसके बारे में, न ही रेडियो न्यूज में था, तो हो सकता है कि अभी इसे विथहेल्ड कर लिया गया हो, रोक लिया गया हो, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक पूर्व खबर और वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है दोस्तों, 26वां सम्मेलन, ये 31 अक्टूबर से होने जा रहा है। अभी कुछ दिन है, आपको ध्यान रखना, ये लंबा सम्मेलन है, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच होने होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें भाग लेने के लिए बकायदे जा रहे हैं। ब्रिटेन का एक शहर है ग्लासगो, वहां यह सम्मेलन होगा। ग्लासगो बेसिकली स्कॉटलैंड वाले एरिया में है, इस पर हम लोग कभी बात करेंगे ना, जैसे हमारे यहाँ होता है ना मालवा और निमाड़ और बुंदेलखंड, तो इसी तरह से वहां भी है, स्कॉटलैंड एक पूरा का पूरा क्षेत्र है वहां है। और वो ग्लासगो जो जगह है वो विक्टोरियन आर्ट के लिए बहुत फेमस है, और इंग्लैंड का तो एक तरह से वो नेशनल कल्चरल हब है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। पॉपुलेशन है केवल 6 लाख, सोच के देखिए, और वहां यह सम्मेलन होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। न्यूज में आपने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में सुना होगा, अखबारों में शायद आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से एशिया में गतिविधियां बढ़ रही हैं तो बस थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए, और वो है कि इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। आसियान के जो 10 सदस्य हैं इसमें भी शामिल है, और इसके अतिरिक्त जो दूसरे नेशंस हैं, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है और रूस है, ये भी इसके सदस्य है, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन। बस इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए, अगर आगे कुछ और घटना घटित होती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, अपेक्षाकृत कम समय है मुख्य विषय के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से खासकर आज 3 बातें कहना चाहूंगा। मेरी शर्ट है, मैंने शर्ट पहन रखी है, ब्रांडेड शर्ट है, और जो ब्रांड भी है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, उसको पहनना एक तरीके से गर्व की बात होती है। बहुत महंगी भी है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत अच्छी लग रही है, मेरी शर्ट है। क्या केवल इसी आधार पर कि इंटरनेशनली ब्रांडेड शर्ट है, बहुत सुंदर भी है, बहुत महंगी भी है, और सर के ऊपर बहुत जच भी रही है, तो ये मेरे ऊपर भी जचेगी? क्या आपको मेरी शर्ट फिट आ जाएगी? क्या आपको मेरी शर्ट खरीद लेनी चाहिए, मेरे जैसी ही शर्ट दूसरी जगह जाकर के बिल्कुल ज्यों का त्यों साइज वगैरह में? तो आपका स्ट्रेट आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर वो मुझ में फिट नहीं बैठेगी, दैट्स ऑल। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी मेरे पास इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाए, नौकरी वाले कैसे टाइम टेबल बनाए, मैं तो नौकरी करता हूं। जबकि इस पर मैं बात बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूं, जो खासकर जो मूलभूत बातें होती हैं वो मैं बता चुका हूं। इसका मतलब यह है कि ध्यान से नहीं सुना जा रहा है, मैं जो कह रहा हूं वो केवल सुना जा रहा है, ध्यान से नहीं सुना जा रहा है। दोस्तों ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आप यूं कह लीजिए कि अभिशाप है, अभिशाप है, क्योंकि आप ना ठीक से सुन रहे हैं, फिर आप ठीक से पढ़ेंगे कैसे? तो क्या मतलब निकला? ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये बहुत ही चैलेंजिंग एग्जाम है, दुनिया के कठिनतम परीक्षाओं में से एक परीक्षा ये मानी जाती है, तो आपको इतनी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो कुल मिलाकर के ये कि आप खुद का प्लानर बनिए। YouTube पर बहुत से लोग अपना अपना प्लान बता रहे हैं, जो हमारे टॉपर्स रहे हैं वो उनका अपना प्लान है, अपनी परिस्थितियों और अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल उन्होंने अपना प्लान बनाया है। आप अपना प्लान बनाइए, और इसी से जुड़ी हुई जो दूसरी बात है वो है कि निर्णय लेना शुरू कीजिए, निर्णय लेना सीखिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आईएएस की कोई भी तैयारी कराने वाला जो आपका मेंटर होगा, जो गाइड होगा, आपकी उंगली को उसी तरह से पकड़ करके, हाथ को पकड़ करके चलाएगा जैसे कि किसी छोटे से बच्चे को चलना सिखाया जाता है या उसे अपने साथ कहीं घुमाने ले जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन रखा गया है, आपने आफ्टरऑल ग्रेजुएशन किया है, तो निर्णय लेना शुरू कीजिए। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर डिपेंड मत होइए कि मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लूं, कि मैं किस कोचिंग क्लास में जाऊं, कि मैं कौन से नोट्स पढ़ूं, तो मैं कौन सा अखबार पढ़ूं। ठीक है, अखबार कौन सा पढ़े, किताब कौन सा पढ़े, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं जो आपके सीनियर्स हैं या जो इसके लिए अनुभवी हैं, वो आपको सही जानकारी दे देंगे। लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के लिए भी अगर आप दूसरों पर निर्भर करेंगे तो इसका साफ मतलब है कि आप निर्णय लेने में डरते हैं, खुद पर आत्मविश्वास नहीं है। दोस्तों सोच करके देखिए कि जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो रहे होंगे और आपके सामने बहुत ज्यादा आंदोलन और आगजनी की घटना होने जा रही है, तो क्या आप अपने कमिश्नर को फोन करके पूछेंगे कि सर क्या मैं ये कर दूं, या फिर चीफ सेक्रेटरी को फोन करके पूछेंगे कि सर क्या मैं ये डिसीजन ले लूं?
नहीं ना, आपको तत्काल डिसीजन लेना पड़ेगा। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, उसे अभी से स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज आप न तो प्री के सही विकल्प तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग को ट्रेंड कर सकेंगे और न मेंस के उत्तरों के लिए आप पॉइंट्स ढूंढ सकेंगे। किसे पूछेंगे आप? ये आदत होती है, आपको अपने दिमाग को इस तरीके से प्रशिक्षित करना होगा। अगर आप प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो मान करके चलिए कि आप अपनी असफलताओं के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आप अपनी केवल सुविधा देख रहे हैं कि दूसरा बता दे और मेरा काम चल जाए। तो ठीक है, अगर दूसरा बता दे आपका काम चल जाएगा तो दूसरा आईएएस बन जाएगा। बहुत सीधा सा गणित है दोस्तों। तीसरी बात कि मैंने कल भी इशारे के तौर पर कहा था, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में लोग बहुत वक्त लेते हैं। आपके पास वक्त नहीं है अगर आप 2022 में बैठना चाहते हैं तो, और थोड़ा सा आप लिबर्टी ले लीजिए थोड़ी सी अगर आप 2023 में बैठना चाहते हैं तो, लेकिन ऑप्शनल सेलेक्ट कर लें। बहुत जल्दबाजी मत करें, तार्किक रूप से इसका चयन करें। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पर मेरा एक लेक्चर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें या चयन कैसे करें, कुछ ऐसा है। अगर आप AFEIS पर जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है कि आपको कैसे चयन करना चाहिए, कि आपकी बैकग्राउंड ये है, ये है, ये स्टेजेज हैं, इस तरीके से आप सेलेक्ट करें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। और अगर आपके पास मेरे ये पुस्तक है कि आप आईएएस कैसे बनेंगे का भाग एक, तो उसमें भी बकायदे ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन के बारे में एक अध्याय है। इसमें देरी मत करें क्योंकि इसका जो अध्ययन है वह पैरेलल चलना है। इसे आप छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते और ऐसा आपको सपने में भी सोचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें मुझे आज आप सबसे करनी थी। हो सकता है कि चार एपिसोड जो आपके सामने आए हैं आपको लग रहा हो कि इसमें सर ने तो अभी तक पढ़ने का कुछ बताया ही नहीं है और किताबों के नाम नहीं बताए और कुछ नहीं बताया। दोस्तों मेरा तरीका यही है, माफी चाहूंगा अगर आप बहुत जल्दबाजी में होंगे तो शायद मैं आपके काम नहीं आ सकूंगा। ये मेरा अपना तरीका है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपने इस तरीके से कहीं किसी भी तरह का कोई समझौता करने की फिलहाल जरूरत है, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सुमेर सिंह नागौर राजस्थान से, सुशील मिश्रा, गुलफराज, सद्भावना सिंह, श्रुति सुमन, सूरज कुमार सेमापुर बिहार से और अनंत चौहान, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।